أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سلام الله عليكم أجمعين سامعين وناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماہ رجب اور اس مہینے میں جو ایام ہیں ان ایام کی مناسبت سے جو مختلف قسم کے پروگرامات ہوتے ہیں ان میں سے ایک جو اہم مناسبت ہے وہ مناسبت عالم اسلام کی ایک عہد ساز شخصیت اور مختلف صلاحیتوں اعلیٰ انسانی اخلاقی الہی صفتوں کے مالک فرد یعنی جناب حضرت عمران ابن عبد المطلب یعنی جناب ابو طالب کی وفات ہے اور اس مناسبت سے بالکل سادہ الفاظ میں مختصر سی ان کی سیرت مبارکہ کے بعض گوشوں پر گفتگو کی میں سعادت پانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسلام کے آغاز کے ایک مرکزی کردار جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور علی مرتضیٰ شیر خدا صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے والد گرامی یعنی حضرت ابو طالب ہیں۔ آغاز اسلام میں دین خدا کے مخالفین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن کر سامنے آنے والی جو شخصیت ہیں انہیں ہم جناب ابو طالب کے نام سے جانتے ہیں۔ حضور پاک کے رشتے میں سچے چچا ہیں کیونکہ آپ کا بیٹا جو سب سے بڑا بیٹا تھا وہ طالب نام رکھتا تھا، اس عنوان سے آپ کو ابو طالب کہا جانے لگا، گرچہ آپ کا جو اصل نام ہے وہ عمران بیان ہوا ہے تاریخ میں۔ حضور پاک کی ولادت باسعادت و طیب و طاہر سے تقریباً 35 سال پہلے آپ کی ولادت مکہ مکرمہ کے ایک ممتاز معروف توحید پرست گھرانے یعنی جناب عبد المطلب کے ہاں ہوئی اور آپ کا سگا بھائی یعنی جناب عبداللہ جو حضور پاک کے والد گرامی ہیں سب کے سب دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، برعکس جو کہ اس عرب معاشرے میں اس وقت زیادہ تر بت پرستی کا رواج تھا، اگرچہ اقلیتیں موجود تھیں لیکن یہ گرانا ایسا گرانا ہے حضور پاک کا جو کہ سب کے سب دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، اس لیے تمام عرب قبیلوں میں اس گرانے کو ایک خاص مقام و منزلت حاصل تھی جو ان کے اعلیٰ کردار کی وجہ سے تھی۔ ہر کوئی اس گرانے کو شروع سے ہی دین ابراہیمی کے پیروکار اور مبلغ کے طور پر جانتے تھے، یہ صرف پیروکار نہیں تھے بلکہ یہ گرانا مبلغ دین الہی یعنی حضرت ابراہیمی جو دین ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تسلسل سے جو ادیان ابراہیمی کہلاتے ہیں ان کے پیروکار تھے۔ جناب ابو طالب کے والد اور حضور پاک کے چچا جناب عبد المطلب کا کردار اس قدر نمایاں تھا یعنی واضح تھا، یہ نمایاں اور واضح قسم کا کردار تھا کہ لوگ آپ کو مختلف اعلیٰ قسم کے القابات سے پکارتے تھے، جن میں سے ایک جو معروف القاب ہے وہ ہے سید البطحاء۔ سید البطحاء یعنی سرزمین کے آقا، اس زمین کے آقا، اور یا آپ کو ساقی الحجیج کہا جاتا تھا، یہ مشہور تھا لوگوں کے درمیان، یعنی حاجیوں کے ساقی ہیں۔ ظاہر ہے اس وقت پانی کا اس طرح کا سلسلہ موجود تھا، جب حاجی خانہ کعبے میں حج کے لیے تشریف لاتے تھے، زیارت کے لیے آتے تھے تو پانی کا جو ایک بڑا ایشو بنتا تھا وہاں پر، تو پانی فراہم کرنا یعنی یہ کوئی آسان کام نہیں تھا جو کہ جناب عبد المطلب فراہم کیا کرتے تھے، یعنی یہ گھرانہ فراہم کرتے تھے۔ اور پھر بعد میں حضور پاک کی آمد کے بعد آپ کو محافظ मुदाफे यानी दिफा करने वाले मुहाफिजो मुदाफे मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि के नाम से जाना गया। लिहाजा जनाब अबू तालिब ने भी एक ऐसे ही घराने में आंख खोली और परवरिश पाई है और एक अजीम घराने और बाप के यहाँ तरबियत पाई है। जनाब अबू तालिब की शोहरत भी शुरू से ही एक अलग अंदाज की थी। पूरा अहल मक्का जानता था कि हजरत अबू तालिब उनके दीन यानी बुत परस्ती को नहीं मानते, बल्कि अपने वालिद अब्दुल मुतल्लिब की तरह इब्राहिमी मजहब का न सिर्फ फॉलोअर है बल्कि जो है वो उसके मुबल्लिग भी हैं, उसकी जो है तशहीर भी करते हैं। इसलिए शुरू से ही जनाब अबू तालिब बहुत से ऐसे काम, ऐसे आदात से दूर थे, ऐसे बुरे चीजों से दूर थे जो उस जमाने में राइज थी अरबों के दरमियान, जिनमें से एक था शराबखोरी, जो तो कि आम था वहां पर, नॉर्मल सी बात समझी जाती थी। बच्चियों का कत्ल करना आम सी बात होती थी। जुआ और सूदखोरी करना, जुआ खेलना, सूदखोरी करना, ये आम सी बात थी। ये तमाम चीजें इस घराने में और खासकर जनाब अबू तालिब में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगी कि ये घराना बिल्कुल इन तमाम चीजों से अलग थलग एक घराना है जो हजरत इब्राहिम के दीन के पैरोकार हैं, आता इंसानी और अखलाकी सिफात के मालिक हैं और उस पूरे माशरे के अंदर एक नुमाया हैसियत और मकाम व मंजिलत रखते हैं। हजरत अबू तालिब शुरू से ही बच्चियों के जो नाहक कत्ल है, जुआ खेलना है, सूदखोरी है, शराबखोरी है, इस किस्म के अमाल के न सिर्फ आप दूर थे इनसे बल्कि आप मुखालिफत किया करते थे इनकी और हद्दुल इम्कान कोशिश करते थे कि समाज के अंदर ये चीजें मौजूद न हों। अगर हम जाती तौर पे देखें हजरत अबू तालिब को, तो आप एक अच्छे ताजिर थे, खासकर कि आप इत्र और गंदम की तिजारत से आप वाबिस्ता थे। एक कामयाब ताजिर होने के साथ साथ आपकी जो सामाजिक शोहरत थी वो अपने वालिद की तरह रफादत यानी मेहमान नवाजी के अनुमान से बहुत शोहरत रखते थे कि बड़े मेहमान नवाज हैं, आला इंसानी अखलाकी इलाही सिफात में से हैं। इसी तरह सकाइयत के नाम से भी आप मशहूर हुए, यानी फिर वही आला काम जो हाजियों के लिए साकी के तौर पर और पानी पिलाने वाले, पानी फराहम करने वाले के तौर पर, जाहिर है पानी फराहम करने के लिए जाती कुओं की जरूरत है, कुएं खुदवाने की जरूरत है और कुओं की जाहिर है मालिकियत मिल्कियत होती थी, कुआं जो खोदा जाता था। तो इसीलिए हम देखते हैं मौलाना मुहिद्दीन अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम ने भी जो चीजें वक्फ की हैं वसीयतनामे के अंदर नाचुर बलागा में, उसमें कुएं और नहरों का तذکرہ मिलता है। कुएं जो आपने खोदे हैं, आपने खुदवाए हैं, आपने खोदे हैं, वो वक्फ आम कर रहे हैं, और नहरें जो आपने खोदी हैं, बंजर जमीनों का आबाद किया है, वो भी जो है इसी तरह जो है वक्फ आम किया हुआ है। लिहाजा ये जो आला अखलाकी सिफात हैं ये अरब माशरे के अंदर बहुत कम ही कहे पर नजर आती थी, मगर ये कि इस तरह के घराने और इस तरह की जनाब अबू तालिब जैसी जो है शख्सियात मौजूद हों। हजरत अबू तालिब सिर्फ एक मजहबी मुबल्लिग ही नहीं थे जो दीन इब्राहिमी की तबलीग किया करते थे, हाजियों के सिर्फ खिदमतकार और खिदमतगुजार और सका ही नहीं थे बल्कि जाती तौर पर एक अच्छे अदीब थे और एक बुलंद पाए के शायर थे, एक ऐसे शायर जिनकी शायरी बहुत गहरी, अमीक और बामकसद और बाहदफ हुआ करती थी, एक तामीराती पहलू रखती थी, एक तामीरी शायरी थी। जैसे कि आज भी बहुत से शोरा हैं जो बेमकसद शायरी भी करते हैं जिसका कोई हदफ नहीं होता, बहुत ही लिमिटेड उनकी सोच होती है, बामकसद है। जैसे अलामा इकबाल हैं हमारे पास, एक विजन रखते हैं, विजनरी शायर जिसको हम कह सकते हैं। तो जिनाब अबू तालिब की शायरी और दीवान अबू तालिब को अगर उठा के देखें तो विजनरी शायर हैं, आला जो है सिफात इंसानी पर बात करते हैं, समाज के अंदर आला सिफात और अखलाकियात पर बात करते हैं, आला इंसानी क्वालिटीज को नुमाया करते हैं और पैगंबर ग्रामी इस्लाम के हवाले से जो शायरी की है वो इतनी अमीक है कि हजरत अबू तालिब ने अल्लाह के हबीब को लेकर कितनी अपनी इश्को वालिहाना इश्को मोहब्बत और फिर अपने ईमान और अपने जज्बे ईमानी को जिस अंदाज से उस दीवान के अंदर बयान किया है, उससे जहां एक तरफ आपके एक आला और बुलंद पाए के शायर, बामकसद शायर होने की तरफ और अदीब होने की तरफ दलालत करती है, दूसरी तरफ आपकी जो मारिफत है हुजूर पाक के हवाले से जो आपके भतीजे हैं और आपके हाथों बचपन में जो है आपके घराने में परवरिश पाई है और आपके यहाँ परवरिश पाई है, आपने जो है परवरिश की है, खुदाए मुताल ने ये तौफीक आपको और ये सआदत दी है। लिहाजा एक बामकसद अदीब और शायर भी हैं, मुबल्लिग भी हैं, हाजियों के खदमत गुजार भी हैं, एक अच्छे ताजिर भी हैं और फिर समाजी रहनुमा भी हैं, समाजी खदमतकार भी हैं जो जरूरतमंदों का ख्याल रखते हैं। आपका दस्तरखान बहुत मशहूर हुआ करता था। और फिर एक क्रिएटिविटी जिसको कहते हैं तख्लीकी सलाहियत, हजरत अबू तालिब तख्लीकी सलाहियतों के मालिक भी थे और बेहतरीन कानूनदान और कानून गुजार भी। एक ऐसा कानून नाफिज करना जो समाज के लिए मफाद आम का पहलू रखता हो। मसलन असर जाहिलियत में हल्फ और कसम को आपने कानून की शक्ल दे दी, मकतूल के वारिसों की जो शहादत और गवाही है उसमें लाजमी करार दे दिया। और दिलचस्प बात यह है कि आप गौर कीजिएगा कि ये जो कानून साजी थी हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की जानिब से, बाद में जब इस्लामी कवानीन ने जजा व सजा आए तो उसके अंदर न सिर्फ इस कानून को तायीद की गई, तस्दीक की गई इसको, और इस कानून को बरकरार रखा गया। यानी ये एक ऐसा कानून था जो ऐन फितरत इस्लामी और फितरत इलाही के बहुत ही करीब था। और हजरत अबू तालिब की ये बसीरत है, उनका इल्म है, उनकी तख्लीकी सलाहियतें हैं, उनकी समझ बूझ है, उनकी नॉलेज है। जाहिर है कि दीन इब्राहिमी की तालीमात की वजह से हजरत अबू तालिब समझते थे कि कानून सजा व जजा के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। खुद एक ऐसी सबूत और दलील है जनाब अबू तालिब की सोच और फिक्र को उस इलाही और वही की जो पैगामात और दीन है उसने जाहिर है कि बनाए थे। हम जो मारूफ हमारे मुसलमान आलिम दीन है, अहले सुन्नत मसलक से उनका ताल्लुक है, जो हलबी है और सीरत हलबी उनकी मशहूर और मारूफ किताब है, वो लिखते हैं हजरत अबू तालिब के इस आला किरदार के बारे में कि अबू तालिब ने अपने वालिद माजिद हजरत अब्दुल मुतलिब बिन हाशिम की मानंद शराब नवेशी को अपने ऊपर हराम कर रखा था। और वो शराब नवेशी बिल्कुल भी नहीं किया करते थे। ये सीरे हलबी के अंदर से मैंने सोचा कि एक तबरुकन एक बात जो है पेश की जाए। अगर हम हजरत अबू तालिब की शख्सियत को और उनके किरदार और सीरत को देखें तो सिर्फ इस्लाम और इंसानी समाज के लिए जनाब अबू तालिब जैसी शख्सियत की खिदमात यहाँ पर इक्तफा नहीं करती, यहाँ पर रुक नहीं जाती, बल्कि इससे आला एक खिदमत है आपकी, मुकद्दस भी है, तकद्दस का पहलू भी है। और हजरत अबू तालिब के लिए सआदत भी है और खुद आप इसको एक बहुत बड़ी इबादत और सआदत समझते थे। और बल्कि आपने अपनी जिंदगी का तमाम तर जो मकसद वो है, मकसद हयात है, उसको इसी चीज यही चीज करार दी थी। और वो चीज ये है कि हजरत खत्मी मर्तबत रहमतुल आलमीन मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल मुस्तफा सल्लल्लाहु वसल्लमहु अलैहि की सरपरस्ती और कफालत करना बचपन में, जिसकी सारी जिम्मेदारी बचपन से ही हजरत अबू तालिब ने हजरत अब्दुल मुतलिब के बाद उठा रखी थी। यहां पर मसला सिर्फ चचा भतीजे के रिश्ते की वजह से नहीं था, बल्कि इसके पीछे हजरत अबू तालिब का जज्बा ईमानी भी था। गोया कि अम्र खुदावंदी ये था कि ये सआदत उस वक्त के मुआशरे के सबसे बाकिरदार आला सिफात के मालिक शख्स को बेनवान खिदमत गुजार सरकार दो आलम होने का एजाज बख्शा जाए और ये सआदत जो है उसे दी जाए। इब्ने शहरे आशूब मशहूर मारूफ मुअर्रिख भी हैं और आलिम भी हैं, कहना है कि अब्दुल मुतलिब का इंतकाल हुआ तो अबू तालिब ने रसूल खुदा को खाने पीने और लिबास और पोशाक में अपने अहले खाने पर मुकद्दम और तरजीह दे रखी थी। यानी अपने अहलोयाल और अपने जो औलाद है उनसे ज्यादा जो है हुजूर पाक के बारे में फिक्रमंद रहते थे और हर चीज में तरजीह दिया करते थे हुजूर पाक को। मसलन दस्तरखान पर अक्सर अबू तालिब का ये जुमला हुआ करता था अहले खाना को मुखातब करके, रुक जाओ और ठहरो, मेरा बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लमहु अलैहि आ जाए तब खाना शुरू कर लेना। देखिए ये मारिफत है हजरत अबू तालिब भी है। मसला सिर्फ यहाँ पर चचा भतीजे का नहीं है, मसला सिर्फ यहाँ पर रिश्ते का नहीं है, बल्कि वो मारिफत है हजरत अबू तालिब है जो बचपन से ही हुजूर पाक के अंदर उस नबुव्वत की निशानियों को देखकर हजरत अबू तालिब समझ चुके हैं कि ये हुजूर पा, ये जो बच्चा भतीजा है मेरा, ये है कौन, कौन सी हस्ती है, क्या शख्सियत है। हजरत अबू तालिब हुजूर पाक के न सिर्फ कार रिसालत में एक पुश्ते पना के तौर पर रहे, बल्कि जबरदस्त किस्म के मुदाफे, दिफा करने वाले और जबरदस्त किस्म के हामी के तौर पर भी पहचाने जाते हैं। पूरे जज़ीरतुल अरब की मुखालिफत और फिर इस हिमायत हुजूर पाक की वजह से साजिशों और फिर मुख्तलिफ किस्म का दबाव, समाजी, सियासी, इक्तसादी, सकाफती, हर फिक्री, हर किस्म का दबाव के बावजूद हजरत अबू तालिब इस सिलसिले को जारी रखते हैं, हिमायत से एक कदम जो है पीछे नहीं हटते। आलम इस्लाम की जो तारीखी किताबें हैं उनमें से एक अहम समझी जाने वाली किताब है तारीख याकूबी। तारीख याकूबी के मुताबिक ये हिमायत, उन्हें हुजूर पाक की हिमायत, क्योंकि जाहिर है हुजूर पाक ने जब इस्लाम का, इस्लाम की दावत का आगाज, जाहिर है कि मुखालफतें शुरू हो गई, साजिशें शुरू हो गई और आपके जो अतराफ हामी हैं, आपके पैरोकार हैं, असहाब हैं, उनके ऊपर भी दबाव बढ़ना शुरू हो गया, तशद्दुद के शिकार हो गए वो लोग, शिदत पसंदों ने तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो तारीख याकूबी कहता है कि तारीख याकूबी ये हिमायत और मोहब्बत उस हद तक थी कि जनाब अबू तालिब और उनकी जोजे मुकर्रमा यानी हजरत फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा रसूलुल्लाह के माँ बाप की सूरत अख्तियार कर गए, यानी राय आम्मा, तासुर आम जिसको कहते हैं, जनरल परसेप्शन जिसको कहते हैं, आम जो तासुर बन गया वो ये बन गया कि गोया की हजरत अबू तालिब और आपकी जोजे मुकर्रमा व मोहतरमा हजरत फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा ये जो है आपके असली बाप हैं। यानी लोग कहने लगे कि ये तो इस तरह हिमायत कर रहे हैं कि चचा चची वाला मामला नहीं, ये तो बल्कि जैसे कि लगता है कि बाप जो है अपने बेटे के डिफेंस में जिस तरह आता है, सब कुछ निछावर करता है, हर किस्म के रिस्क को फेस करता है, हर किस्म के चैलेंज को फेस करता है, इस अंदाज से ये सामने आ रहा है। मतलब कहने का ये है, हजरत मुख्तसर करते हैं और आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते, हजरत अबू तालिब के कसाइद और जो मंजुमे कलाम है, दीवान है, हकीवाना है, अदीबाना है, और तकरीबन 1000 के करीब जो है मौरखीन कहते हैं कि अबियात या अशार इस पर मौजूद हैं, और दीवान अबू तालिब के नाम से ये मशहूर हो चुका है। और जो कुछ अगर कोई इस अशार को उठा के देखें तो सब रसूल खुदा की रिसालत और नबुवत की तस्दीक और ताईद पर मबनी है ये तमाम अशार, बड़ी गहराई में, बड़े इंतहाई जो है अमीख अंदाज से, फसीह बलीग अंदाज से। और आपका जो मशहूर तरीन कसीदा है, कसीदा लामिया के इनवान से मशहूर है। मुख्तसर करता हूं और आखिरी जो जुमले आपकी खदमत में अर्ज करने हैं वो ये हैं कि ये जो मुदाफे व मुहाफिज कार रिसालत व नबुवत थे जनाब हजरत अबू तालिब, तकरीबन 90 साल की उम्र में वफात पा जाते हैं। आलम इस्लाम के मोहसिन हैं, मुसलमानों के मोहसिन हैं। आपकी वफात किसी एक आम अरब शख्सियत की वफात नहीं है, यानी इसकी एक बड़ी शख्सियत वफात पा गई है अरबों में, बात इस लेवल पे भी नहीं, इससे बड़ी लेवल की है। किस लेवल की है, आपकी वफात को किस लेवल पे, अब यहाँ पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु वसल्लमहु अलैहि, हुजूर पाक किस अंदाज में इस वफात को बयान करते हैं, अब अंदाजा लगा लीजिए कि फिर उससे अंदाजा हुआ कि ये जो वफात है, जैसे कहते हैं ना हम आदिस पढ़ते हैं कि आलिम की मौत आलम की मौत है, आलिम के मरने से इस्लाम में जो खला वाक़ हो जाता है वो आसानी से फिल नहीं होता, या कहते हैं जी फला शख्सियत की जगह अब कौन लेगा वगैरह, मुख्तलिफ किस्म के हम अंदाज से बयान करते हैं, अहादीस भी इसके तरफ इशारा करती हैं, अहमियत बतलाती हैं। तो हजरत अबू तालिब की वफात को किस तरह लिया जाए, एक बहुत बड़ी अरब मशहूर मारूफ समाजी मजहबी सियासी एक बहुत बड़ी खदमत गुजार शख्सियत की वफात नहीं, इस लेवल से भी ऊपर की वफात है ये जो है। ये वफात दर हकीकत हजरत खत्मी मर्तबत सलवातुल्लाहि वसलामु अलैहि के एक जबरदस्त हामी की वफात है। इसीलिए हम देखते हैं कि क्योंकि इस साल जिस साल हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम वफात पा गए थे, इसी साल जो है उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजा सलामुल्लाह अलैहा की भी वफात हुई। तो ये दो बड़ी अजीम शख्सियात की वफात हुई थी, लिहाजा जब जनाब अबू तालिब की वफात होती है तो हुजूर पाक उस साल को ही गम और दुख का साल करार देते हैं और आमुल हुजन यानी दुखों और गमों का साल करार देते हैं। और तारीख मुअर्रखीन लिखते हैं कि जब हजरत अबू तालिब जैसी शख्सियत वफात पाती है, जो हुजूर पाक के जबरदस्त हामी हैं, मुदाफे हैं, तो उस वक्त जो है आपने सख्त गिरिया फरमाया। हुजूर पाक के चेहरे अकदस पर आपके मुकद्दस आंसू बहने लगे हजरत अबू तालिब की वफात पर। हजरत अली अलैहिस्सलाम को गुस्ल व कफन देने का हुजूर पाक ने हुक्म दिया और जाहिर है कि मौलाना मोहिद्दीन के अली मुश्किल कुशा के वालिद मोहतरम हैं, आपने उनके लिए तलब रहमत की खुदा से, आपने दुआ मांगी हुजूर पाक ने। मेरे ख्याल में किसी भी शख्स के लिए, चाहे उसकी सोच कैसी भी हो, उसका अकीदा कैसा भी रहा हो, अगरचि यहाँ पर बात वाज़ह हो चुकी है कि मुझे अल्फाज जबान पे लाने की जरूरत नहीं है कि हज़रत अबू तालिब क्या है, उनका अकीदा क्या है, उनकी सोच क्या है, ये वाज़ह और क्लियर है, अंडरस्टूड बात है। चंद लोगों के शोर से कोई हकीकतें बदलती नहीं, वो इस मौजू पर नहीं, और भी बहुत से मौजूदात पे इस तरह के शोर शराबे मौजूद हैं जो एक प्लांटिट और एक प्लान के तहत किए जाते हैं ताकि मुकद्दसात और तकद्दस का जो लेवल है वो गिर जाए। बहरहाल तो हुजूर पाक जैसी शख्सियत किसी के लिए तलब रहमत करें, अब क्या इस बात की जरूरत होती है कि हम टटोलें कि उसकी जिंदगी कैसे गुजरी होगी और उसका उसकी मौत कैसे आई होगी, उसका अंजाम क्या हो चुका होगा। हुजूर पाक तलब रहमत की दुआ करते हैं। जब हजरत अबू तालिब की तदफीन हो गई तो उस वक्त हुजूर पाक ने यह जुमला फरमाया कि इस तरह आपकी मगफरत और शफाअत के लिए दुआ करूंगा कि जिन्न और इंस हैरान रह जाए। आपके जसद खाकी को आपके वालिद ग्रामी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ कब्रिस्तान हुजूम में सुपुर्द खाक किया गया और यूं उस वक्त के मुसलमान और आलम इस्लाम कयामत तक एक मोहसिन इस्लाम, एक ऐसी शख्सियत से महरूम हो गए जिसका किरदार इंतहाई दरख्शां, जिसकी खिदमात इंतहाई दरख्शां और वसी, किसी एक फील्ड में नहीं, मुख्तलिफ मल्टी जो है साइट्स पर आपकी खिदमात, और सबसे बढ़कर हुजूर पाक के बहुत बड़े मुदाफे, हुजूर पाक के मुहाफिज, हुजूर पाक के बचपन में परवरिश की जिम्मेदारी और सआदत पाने वाले हजरत अबू तालिब से हम महरूम हुए। परवरदिगार आलम से दस दुआ है कि परवरदिगारा हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद और हुजूर पाक से रिलेटेड उनसे मरबूत जितनी भी शख्सियात हैं उनकी सीरत तय्यब व ताहिर को समझने की और फिर उस पर अमल दरामद करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा जितने भी हमारे सामीन और नाजरीन हैं, परवरदिगारा अगर कोई परेशान हाल है तो उनकी परेशानी को दूर फरमा। जितने खिदमत करते हैं बेलोस अंदाज से कुरान और इतरत का, दीन मुबीन इस्लाम का, हुजूर पाक के इस दीन की खिदमत करने की कोशिश करते हैं दामे दरहमे सुहाने कदमे, परवरदिगारा उनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।